क्रिया भी प्रकृति है, देह भी प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार ये सब प्रकृति है। अश्वधा प्रकृति के अंतर्गत सब आ जाते हैं। इससे भिन्न भी कुछ है? जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्त है वो सब प्रकृति ही तो है। ये देहादि प्रकृति क्या है? बोले ये उपासना सामग्री है। उपास्य भगवान, उपासक जीव, शरीर भी उपासना की सामग्री है। मकान, दुकान, रुपया, पैसा, अन्न, धन, जल, पत्र, पुष्प, फल, कुटुंब, परिवार, कहां तक कहें हमारे घर के पशु पक्षी, वो सब भी उपासना सामग्री हैं। क्योंकि वैष्णव स्वयं खुद समर्पित नहीं होता है, आप सकुटुंब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण तवास, श्री राम तवास। इसलिए वैष्णवों के सिद्धांत में स्वरूप का ज्ञान यही है, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, यही है स्वरूप। और मेरे पास जो कुछ है सब भगवान के लिए। और जब तक ये भाव भीतर से नहीं आया, तब तक चाहे नीचे सिर करके ऊपर पैर कर लो, वो चाहे बर्फ में चले जाओ, चाहे आग में घुस जाओ, माया पिंड छोड़ने वाली नहीं है। तावद रागादयस्तेना तावद कारा गृहं गृहं तावन मोहं विनिगडः यावत् कृष्ण नते जनः। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, तब तक रागादिक चोर इसकी भजन रूपी संपत्ति को लूटते रहते हैं, तब तक उसका घर कारागार के समान होता है, तब तक मोह की सुदृढ़ जंजीर में जीव बंधा रहता है। कब तक? बोले जब तक अपने भीतर से यह पक्का निश्चय नहीं कर लेता कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जब तक ये निश्चय नहीं कर लेता तब तक तो महाराज माया पिंड छोड़ने वाली नहीं। और भगवान के बन जाओ फिर माया की दाल गलने वाली नहीं है। फिर कहीं माया उपद्रव करे तो इतनी शक्ति आ जाती है शरणागत में, ललकार देता है माया को। हम उसे जनी लागे तू माया,
हम से जनी लागे तू माया,
हम से जनी लागे तू माया,
हम से जनी लागे तू माया।
भोरे से फिर बहुत होई,
भोरे से फिर बहुत होई,
सुनते हैं रघुराया,
सुनते हैं रघुराया,
हमसे जन लागे तू माया,
हमसे जन लागे तू माया।
माया ने कहा क्या बिगाड़ लोगे, हमने बड़े बड़ों को धूल चटा दी है, तुम किस खेत की मूली हो? जब तक तुम रक्षा के लिए अपने आराध्य को पुकारोगे तब तक तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। बोले हमको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तो वही है, वो हर समय मौजूद है।
अपने में है साहिब मेरा अजू चेत दीवानी, अपने में है साहिब मेरा अब मुझे लाए।
साहू जन के बस पर जाएगी,
साहू जन के बस पर जाएगी,
भरत मरेगी पानी
भरत मरेगी पानी।
हमसे जन लागे
हमसे जन लागे तू माया।
किसी भगत के चक्कर में फंस गई ना तो पानी भरते भरते मरेगी, टहल में लगा देंगे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू। अच्छा एक बात बताइए, अम्बरीश जी के पास संपूर्ण समृद्धि आ गई, माया की कमी थी क्या बिगाड़ पाया? वो सारे वैभव को, पद को, प्रतिष्ठा को, संपत्ति को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है? क्या बिगाड़ेगी भक्त का माया?
अपने में है साहिब हमारा अजू चेत दीवानी, अपने में है साहिब मेरा अजू चेत दीवानी,
काहू जन के बस पर जाएगी,
काहू जन के बस पर जाएगी,
भरत मरेगी पानी
भरत मरेगी पानी।
हमसे जन लागे तू माया,
हमसे जन लागे तू माया,
तरहे छिते लाज कर जन की डार हाथ की फांसी,
लाज कर जन की डार हाथ की फांसी,
जन पे तेरो जोर न चली है,
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 रक्षपाल अविनाशी
रक्षपाल अविनाशी,
हमसे जन लागे तू माया,
हमसे जन लागे तू माया।
कहे मलूका चुप कर ठगनी अवगुण राखी दुराई,
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 जो जन्म भरे राम नाम जपी,
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 तीन सौ कछु न बसाए,
तीन सौ कछु न बसाए,
हमसे जन लागे तू माया,
हमसे जन लागे तू माया।
थोड़े से फिर बहुत होएगी,
थोड़े से फिर बहुत होएगी,
सुनते हैं रघुराया,
सुनते हैं रघुराया,
हमसे जनिला दे तू माया,
हमसे जनिला दे तू
माया।
श्री वृंदावन बिहारी, देखो भगवान भोगता है हम लोगों के सिद्धांत में, भगवान भोगता है और जीव और प्रकृति ये दोनों भगवान के भोग्य हैं। जीव भी भोग्य है और प्रकृति भी भोग्य है। भोग्य का अर्थ क्या होता है? भोक्ता जिसको ग्रहण करे, भोक्ता जिसका स्वाद ले, उसको भोग्य कहते हैं। आस्वादक भगवान है और जीव और प्रकृति आस्वाद्य हैं, भोग्य हैं। भोग्य जो है वो जब भोक्ता बन बैठता है तो उपद्रव माया का शुरू हो जाता है। प्रकृति भी भोग्य है और जीव भी भोग्य है, पर जीव भोग्य होता हुआ अपने को भोक्ता मान लेता है, भगवान को भुला देता है और प्रकृति को अपना भोग्य मानकर मनमाने ढंग से प्रकृति को भोगने लग जाता है। अरे भैया, प्रकृति है तो परमात्मा की और ये जीव उसको अपना भोग्य मानता है, यही अनर्थ की जड़ है। इसलिए मैं भगवान के लिए हूं, मेरे लिए केवल भगवान है और मैं केवल भगवान के लिए हूं। और ये शरीर किस लिए? बोले भगवान के लिए। इंद्रियां किस लिए? भगवान के लिए। मन बुद्धि चित्त किस लिए? भगवान के लिए। घर किसके लिए? भगवान के लिए। खेती पाती नौकरी चाकरी मकान दुकान सब किसके लिए? सब भगवान के लिए। तो खेती पाती नौकरी चाकरी सब भगवान के लिए। ये सब भगवान की वस्तु है, भगवान की मान कर रहो, भगवान के चरणों में निवेदित कर दो तो कोई बाधा नहीं। गीता प्रेस से श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के संपादकत्व में अनेक भक्त चरित्र की छोटी छोटी पुस्तकें निकली हैं, जैसे कि प्राचीन भक्त, ऐसे भक्त सुमन, भक्त सौरभ आदि छोटी छोटी पुस्तकें निकली हैं। कल एक भक्त चरित्र के चरित्र को हम देख रहे थे, बड़ा अद्भुत चरित्र महाराज। कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, कितने बड़े बड़े संकट आए, पत्नी मर गई, लड़का मर गया, माता पिता मर गए, खुद इतने बड़े व्यक्ति संकट में पड़ गए, समाज का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित ईमानदार व्यक्ति सबके सामने बेईमान साबित हो गया, पर इसके बाद भी उनके चित्त में तनिक भी भय नहीं है, तनिक भी ग्लानी नहीं है। वे भक्त बार बार कह रहे हैं प्रभु के समस्त विधान मंगल में, भगवान की बड़ी कृपा है। भाई जी ने लिखे चरित्र, पढ़ने योग्य चरित्र हैं। तो चरित्र तो आप पुस्तक मंगा करके पुस्तक से पढ़ लेना, यही गीता प्रेस है, यही सब साहित्य उपलब्ध है, मगा के पढ़ना जरूर। पर हमारे निवेदन करने का तात्पर्य है, थोड़े से छोटे संकट आने पर हम विचलित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में बड़ी भगवान की कृपा है और थोड़ी भी प्रकूलता आई तो भगवान के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि इस शरीर संसार को हम अपना मान लेते हैं और ये भगवान का है, तो भगवान जैसे चाहे वैसा उपयोग करें। भगवान को जरूरत नहीं रहेगी लड़के की, लड़के को उन्होंने अपने पास बुला लिया, अब भगवान को जरूरत नहीं, भगवान ने अपनी सेवा बुला, हम क्यों काहे को रोग में, हमारा क्या गया है? ये सब भगवान की वस्तु है, भगवान ने दिया थी, भगवान ने रख ली। दुकानदार दुकान खोलता है तमाम कपड़ों को लटका करके दुकान के बाहर रखता है और दुकान बंद करने को होता है तो उठा उठा करके घड़ी करके फिर भीतर रख देता है। अब कोई रोने लग जाए, हाय रे हाय दुकान क्यों समेट ली। अरे भाई, लगाने वाला लगाने में स्वतंत्र है और उसको समेटने में भी स्वतंत्र है। परमात्मा ने घर गृहस्थी की दुकान लगाई थी, समेट के धर दी, अब काहे का रोना धोना। अपने तो पल्लेदार हैं, नौकर हैं, ये उठा लाओ, ये कर दो, यूं कर दो, त्यों कर दो, नौकर हैं। मालिक की जब तक आज्ञा तब तक नौकरी करनी। इस शरीर को और शरीर से संबद्ध संसार को अपना मानने से ही जीव भगवान से विमुख हुआ है, विपत्ति में पड़ा है। इसलिए तब तक रागादिक चोर उसकी संपत्ति को चुराते रहते हैं, तब तक उसका घर कारागार के समान रहता है, तब तक वह मोह की रस्सी बंधा रहता है, जब तक हे भगवान वह आपका नहीं। तो उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, ये तीनों होना अनिवार्य है, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी। भक्ति बनेगी। अब देखिए, उपासक जीव कल्पित है, कल्पित हो गया, मिथ्या हो गया, कल्पित माने मिथ्या, और प्रकृति भी कल्पित है, वो भी मिथ्या है। तो उपासक भी कल्पित हो गया, उपासना सामग्री भी, उपासक जीव का अस्तित्व नहीं, उपासना सामग्री का अस्तित्व नहीं, और जो ईश्वर जिसे हमने उपास्य माना है वो भी मायोपाधिक हो गया। जिन्होंने दर्शन ग्रंथों को पढ़ा है उनको बात समझ में आ रही होगी। वो माया, माया की उपाधि वाला हो गया, माया की उत्कृष्ट उपाधि वाला ईश्वर है और माया की अप्रकृष्ट उपाधि वाला जीव है, ऐसा अद्वैत दर्शन में माना गया है। तो अब राम जी, जिसे हमने आराध्य उपास्य इष्ट माना था वो भी कल्पित ही हो गया, क्योंकि वो माया से मुक्त नहीं हुआ अपितु माया से युक्त रह गया। यद्यपि सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी वे ज्ञान मार्ग के उच्च कोटि के साधक थे और अद्वैत सिद्धांत में उनकी बड़ी भारी निष्ठा थी, लेकिन इसके बाद भी वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे कि सगुण साकार परमात्मा माया से मुक्त नहीं है, माया से युक्त है। इस बात को सेठ जी ने कभी स्वीकार नहीं किया, निषेध किया इस बात का। और निषेध ही नहीं, उन्होंने तो अपने अनुभव से यहां तक कहा कि भगवान सगुण साकार कृपा करके हमें दर्शन न देते तो अनर्थ हो जाता, सगुण निर्गुण का भेद बना रह जाता है, पर दर्शन होती पता चल गया कि वे ही सगुण हैं और वे ही निर्गुण हैं, उनमें भेद नहीं। तो भैया, उपासना बनती रहे इसके लिए तो तीन चीजें जरूरी हैं, उपास्य जीव, उपासक भगवान और उपासना की सामग्री। अब यहां तो सैद्धांतिक रूप से तीनों ही लड़खड़ा जाते हैं, तो भक्ति कैसे बनेगी, भक्ति कैसे बनेगी। बोले, तब श्री शंकराचार्य जी क्या कहना चाहते हैं, क्या वे भक्ति का खंडन कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वे तो परम भागवत हैं, भक्ति का खंडन शंकराचार्य कैसे कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे अभी आप उनके सिद्धांत की दुहाई दे रहे हैं, फिर आप ही दूसरे ढंग का प्रतिपादन कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे विचार को मान ही लीजिए, पर भगवत कृपा से हमारी समझ में ऐसा आता है कि उस काल में बौद्ध मत अत्यंत प्रचंड था, जो ईश्वर के अस्तित्व को, ब्रह्म के अस्तित्व को नहीं मानता था, अनिश्वरवादी था, तो शंकराचार्य ने ब्रह्म के तत्व के प्रतिपादन में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर अपने अद्वैत दर्शन के माध्यम से बौद्धों को उत्तर दिया। बाकी स्वयं वे भक्ति के कभी विरोधी नहीं रहे। इसलिए यदि शंकराचार्य के सिद्धांत को आप उपासना के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी भक्ति नहीं बनेगी, और यदि आप उसे केवल अनिश्वरवादियों को दिए गए उत्तर के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं। प्रियादासी ने भक्तमाल की टीका की तो आद्य शंकराचार्य के चरित्र में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी। आज से करीब 350 साल पहले वे कह रहे हैं, भक्ति ही प्रचार पाछे मायावाद दार दीनो,
भक्ति ही प्रचार पाछे मायावाद दार दीनो।
वो कहते भक्ति के प्रचार के लिए शंकराचार्य जी आए थे, पर उन्होंने बौद्धों को उत्तर देने के लिए मायावाद डाल दिया। इतने सुंदर सुंदर भक्ति के स्तोत्र लिखे हैं, वो भक्ति के विरोधी कैसे? तो राम जी, हम निवेदन यही कर रहे थे भाई, तीन चीजों का होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए भगवान के भक्त प्रकृति को बिल्कुल बाधक नहीं मानते। भगवान में बाधक काहे को है, वो तो उपासना सामग्री है। ये भगवान की बड़ी कृपा, हमको शरीर मिला भगवान के लिए है, आंख है तभी तो दर्शन कर रहे हैं, कान है तो कथा सुन रहे हैं, अब लीला का गान कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। अब इससे संतोष नहीं है क्योंकि यह प्राकृत है। इससे संतोष नहीं है स्वामी जी, ये प्राकृत है, देह के धर्म इसके साथ जुड़े हुए हैं, भूख प्यास निद्रा श्रम ग्लानी भय रोग मृत्यु आदि आदि उपद्रव इसके पीछे लगे हुए हैं, और संतोष हो नहीं रहा भगवान की भक्ति करते करते। तब क्या करें? बोले हे नाथ, अब ऐसी ऐसा स्वरूप दे दो कि बस फिर देह धर्म की निवृत्ति हो जाए और हम निरंतर आपका अनुभव करते रहें। यही है नित्य सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति। सहचरी बन गए, सखी बन गए, मंजरी बन गए, गोपी बन गए, दास बन गए, सखा बन गए, भगवान के नित्य धाम में जाकर के। अब वहां कोई बंधन थोड़ी है, वहां ना प्रकृति, वहां प्रकृति की गति नहीं है, वहां प्राकृत इंद्रियां नहीं है, वहां दिव्य अप्राकृत चिन्मय बपू है। और दूसरे सिद्धांत में भले ही उसे मोक्ष न माना गया हो, लेकिन वैष्णव सिद्धांत में तो उसे कैवल्य से भी बढ़कर माना गया है। क्यों? बोले कैवल्य में लीला का सुख नहीं है। हमारे ब्रज में देवर्षि नारद जी और महर्षि लोमश जी दोनों आए ब्रह्मलोक से लीला दर्शन करने, और उस समय हमारे लाला बहुत छोटे थे, लालजी बहुत छोटे रहे, वे नंद महल से बाहर खेल वे को इच्छा कर रहे हैं। तो लालजी घुटरुवन चलते हुए प्रथम ड्योड़ी पे प्रथम द्वार तक पहुंच गए और बाबा की ऊंची देहरी को अपने करकंज से सहारा लेकर खड़े हो गए। अपनी हथेली देहरी पे पधराए के ठाकुर, घुटरुवन चल रहे ना तो देहरी पे करतल पधराए के ठाकुर जी खड़े हो गए। अब बाबा की देहरी ऊंची, पल्ली तरफ ठाकुर जी चरण कैसे पधरावे, तो ठाकुर जी ने प्रयत्न तो पूरा कियो, एक चरण उठायो, छोटे थे लाल जी, दो चरण उठ गए, उठायो तो एक उठ गए दो चरण। अब ठाकुर जी के करकंज तो देहरी पे पहले से ही विराजमान, अब ठाकुर जी को उधर भी विराजमान है गयो, तो ऐसे पेट के बल आगे और थोड़े झुके, और थोड़े पीछे से उठ गए, आगे थोड़े झुक गए, ऐसे देहरी पे ठाकुर जी लटक गए। अब महाराज इधर से चरण उठ गए और उधर पहुंच नहीं पाए, देहली पे लटक गए, तो लटके भय ठाकुर जी रोएवे लगे। वही समय लोमस जी और नारद जी दर्शन करवे आए, दर्शन करके आनंद भयो। नारद जी वीणा बजाए बजाए के नृत्य करवे लगे, कीर्तन करवे लगे। लोमस जी हु बड़े आनंदित भय, और पतो नहीं कहा भयो थोड़ी देर में नारद जी रोएवे लगे। लोमस जी ने कहा बाबा झांकी के दर्शन करके आप आनंदित भय, आपके नृत्य करवे को रहस्य तो हमारी समझ में आ गए, पर आप रोएवे काय को लगे। नारद जी बोले लोमस जी हम उन मुक्त पुरुषों के लिए रो रहे हैं जो ब्रह्म में लीन हो गए, जिन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया उनके लिए हम रो रहे हैं। क्यों? बोले हम भगवान की इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, वेद की ऋचाएं जिसे खोज रही हैं, जो वेदांत वेद्य है, आज वह लटकंत ब्रह्म के रूप में दर्शन दे रहा है। नंद की दहली पर लटक रहा है, लटकंत ब्रह्म के रूप में दर्शन दे रहा है। इस झांकी का दर्शन करके हम आनंदित हैं, पर जो ब्रह्म में लीन हो गए, अपनी सत्ता जिन्होंने खो दिया, अब दर्शन की तो कहा चले, वे ज्ञानी अब इस लीला का श्रवण भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें लीन नहीं होना है। गोस्वामी जी कहते हैं
ताते नाश ना होई जीव कर,
ताते नाश ना होई जीव कर,
भेद भक्ति बाढ़े बिहंग वर,
भेद भक्ति बाढ़े
सगुण उपासक मोक्ष ना ले,
सगुण उपासक मोक्ष ना ले,
कहूं राम भक्ति नीज दे,
तिन कहूं राम भक्ति नीज दे,
स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं तास है,
स्वर्ग नरक अपवर्ग दास नहीं तास है,
जहां राखो तहां रहो मान देहु दया कर दान आ, देहु न भूलो के को,
देहू दया दान न भूलो को,
भगवत बलित तमाल बिलो कहुबे,
भगवत बलित तमाल बिलो कहुबे,
रस में रह रस केनी रस में रहती
हाँ रस में रहती गरी रस में
कनक बेली रस भानु रस में रहते
रस करी रस में रहते
बिहरत श्री गिरिधर लाल को
बिहरत श्री गिरिधर लाल सो
कौन सुपाज बड़ी
रसिक कौन सुपाज बड़ी
कुंभर दास लाल की
बस इस झांकी के आगे मोक्ष कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करिमान। महाराज जी केवल रूप का दर्शन नहीं नाम का स्वाद भी ऐसा ही है। नाम का स्वाद जब वैष्णवों को मिल जाता कहते नहीं नहीं अब ब्रह्म सुख नहीं चाहिए हमको तो बस यही सब कुछ है। नाम का स्वाद रूप का स्वाद लीला का स्वाद धाम का स्वाद सत्संग का स्वाद यही है। हे नाथ वो कोई बंधन की अवस्था नहीं है ऐसा नहीं समझे कि वो कैवल्य मोक्ष ही मोक्ष है वो बंधन नहीं क्योंकि बंधन और मोक्ष की परिभाषा भी शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुक्तिर ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही को यो विषयानुरागी विषयानुराग ही बंधन है और विषय से वैराग्य ही मुक्ति है। संसार शरीर से वैराग्य हो गया नाम रूप गुण लीला में अनुराग हो गया इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी। तो इसलिए भैया सिद्धांत रूप से इन तीनों का होना अनिवार्य है। तो ये बात ज्ञान विहीन के ऊपर आ गई। वैष्णवों के सिद्धांत के सिद्धांत में ज्ञान यही है ज्ञान का स्वरूप यही है कि हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे हैं ऐसा समझकर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो भगवान के चरणों में निवेदित हो। हम भगवान के हैं यही ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बस मोक्ष हो गया। तो ये ज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होगा, चाहे तो आदि शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुरूप ज्ञान, हम ब्रह्म से अनतिरिक्त हैं, अलग अस्तित्व नहीं है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि सोहम अस्मि, अथवा जो भक्तों ने स्वीकार किया है उस भाव से, किसी भी भाव से, ये जब तक जागृत नहीं हुआ है, तब तक इसी संस्कृति के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा। ऋषिकेश में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से एक दिन के प्रवचन में सत्संग में हमने सुना, स्वामी जी घड़ी की ओर संकेत करके कह रहे थे कि देखो अभी इतने बजने में इतना मिनट कम है, एक दो मिनट बाकी है। बोले एक मिनट पूरा नहीं हो पाएगा, तुम अभी मुक्त हो, केवल हृदय से पक्का कर लो कि हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही मेरे, अभी मुक्त, इसी समय मुक्त, ऐसा स्वामी जी कहें। अब बात बिल्कुल सही, बंधन ही इसी बात का है कि हम शरीर संसार से अपना संबंध जोड़ के रखते हैं, ये शरीर भी भगवान के लिए है और ये परिवार कुटुंब ये सब भगवान के लिए है, ये रखें तो अच्छा, न रखें तो और अच्छा, इनकी जिसमें प्रसन्नता हो वह करें, पर हे नाथ हम केवल आपके हैं, आप मेरे हैं, ये भाव भी बार बार भीतर से पक्का होना चाहिए। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, और काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी। तो पंडित मित्र महर्षि लिख रहे हैं वीर मित्रोदय में कि इन दोनों की संगति कैसे होगी, क्योंकि काशी में मरना ही मुक्ति है, ज्ञान उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, मर गया मुक्त हो गया, और एक ऋचा ये भी है काश्याम मरणान मुक्ति, और दूसरा ये भी है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, और दोनों की संगति कैसे होगी, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति किसी ने स्वीकार नहीं किया। अज्ञान ही तो बंधन है, ज्ञान हो गया तो मुक्त तो है ही है, बंधन कहां है, मुक्त है। तो श्रुति से विरोध हो जाएगा, श्रुति का श्रुति से विरोध हो जाएगा, अब बड़ा झमेला पड़ गया, क्या करें। तो बहुत लंबा शास्त्रार्थ है, लेकिन इन निर्णय बहुत अच्छा दिया, हम निर्णय सुना रहे हैं। वे निर्णय देते हैं कि भैया काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी सही है। क्यों? बोले जब कोई भाग्यशाली जीव काशी मरने के लिए जाता है, काशी में मरता है, तो भले ही उसका उसका ज्ञान, उसकी साधना इस प्रकार की न भई हो कि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान भया हो, लेकिन जब वह जीव मरने लग जाता है तो परम करुणामय भगवान शिव उसे श्री राम तारक का उपदेश देते हैं, और समर्थ आचार्य उपदेश देता है, तो फिर उसमें जीव की पात्रता अपात्रता का विचार नहीं होता है, उसकी सामर्थ्य ऐसी होती है, उसकी सामर्थ्य उसे ज्ञान हो जाता। बोले शंकर जी राम नाम का उपदेश करें और फिर भी अज्ञान रह जाए, ये कैसे संभव है? शंकर जी राम नाम सुनाते ही जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और वो मुक्त हो जाता है। पर ये कृपा भगवान शंकर काशी में मरने वालों पर करते हैं, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, शंकर जी को उपदेश से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और दोनों श्रुति वाक्य था, दोनों श्रुति का अर्थ लग जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा। हमको बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर। हरिशरणम, तो काशी में भी बहुत से केदार खंड में जो नहीं मरते हैं, क्योंकि केदार खंड में सद्या मुक्ति है और काशी खंड में क्रम मुक्ति है, जिसको विश्वेश्वर खंड कहा जाता है, उसमें क्रम मुक्ति है, भैरव यातना भोगने के बाद मुक्ति है। तो वहां अपने किए गए कर्मों के फल भुगतान के लिए कुछ दिन यातना सहन करनी पड़ती है, उस समय कोई योनि प्राप्त हो जाती है, ये तात्पर्य समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई बार जैसे गोरखपुर में रहने वाले सब गोरखपुर के ही थोड़े हैं, सब गोरखपुर के हैं, ये मारवाड़ी वैश्य समाज जितना है सब राजस्थान के हैं, यहां के मूल निवासी तो मूल निवासी हो। आप कहेंगे हमारा राजस्थान में अमुक गांव है, अमुक जिला है, ऐसा कहते हो क्या? इतनी पीढ़ी पहले पूर्वज आए थे, ये बात कही जाती है। तो जैसे धरती पर मनुष्य जिसकी जहां सुविधा बनती है वहां वो जाकर रह जाते हैं, रहने की पात्रता न हो तो भी, ऐसे ही कतिपय ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो उस योनि, कोई पूर्व का सुकृत तो उनका होता है, पर कोई दुर्भाग्य से वे अधम योनि को चले गए, तब उनको होता भैया मुक्त कहां होंगे चल के, बोले चलो भैया काशी में चलें, वहां जल्दी कृपा हो जाएगी, तीर्थ धाम के वास के प्रभाव से वहां जल्दी मुक्ति हो जाएगी। तो कई बार अन्यत्र के भूत प्रेत भी तीर्थों में आकर बस जाते हैं मुक्ति के लिए, और वहां कथा कीर्तन लीला उत्सव होते रहते हैं, कभी ना कभी तो मुक्ति हो जाएगी। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जिस प्रेत ने पता बताया हनुमान जी कथा सुनने आते, वो प्रेत प्रेत कौन था उसकी कथा आगे आएगी। वो सुधोली ग्राम का एक ब्राह्मण बालक ही था, वो स्वामी जी भजन कर रहे थे और बालकों के साथ आकर के गाली गलौज करने लग गया, धूल मिट्टी फेंकने लग गया। गोस्वामी जी शांत भाव से निर्विकार भाव से बैठे रहे। बाद में बहुत ज्यादा जब उसने उपद्रव किया और तो सब भाग गए बालक घर, पर ये तो गालियां बकता रहा और धूल मिट्टी फेंकता रहा, गोस्वामी जी को घायल कर दिया इसने। गोस्वामी जी के मन में आया बड़ा दुष्ट बालक है, मेरे शरीर में चोट लग रही है, घाव हो रहे हैं और ये प्रसन्न हो रहा है। तो गोस्वामी जी ने थोड़ा क्रुद्ध होकर के कहा कि अरे तू ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ब्रह्म पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, अब सिद्ध संत की वाणी से इतना ही निकलना बहुत है। गोस्वामी जी तो वहां से चले गए। यही लड़का आगे चलकर प्रेत बन गया, और अप्रेत बना तो संत का दर्शन हुआ था। ये सुकृत देखो भले ही गाली गलौज की बातचीत हुई पर संत का मिलन तो हुआ, वो संत दर्शन संत मिलन के सुकृत के कारण प्रेत योनि में जाने पर भी उसको ये सद्बुद्धि आई कि वे महात्मा काशी में रह रहे हैं, वे कृपा करेंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। और गोस्वामी जी शौच जाते, कमंडल का जल फेंक देते और वहीं वह एक वृक्ष पर निवास करता था, अशुद्ध जल को पी लिया करता था। और अंत में उसने कहा बाबा मुझे बहुत कृपा की है आपने, मैं वही बालक हूं प्रेत बन गया आपके शाप से, मेरा उद्धार करो, मैं देवयोनि में हूं, क्यों भूतों में देवयोनि है, भूत प्रेत भी देवयोनि में ही आते हैं, मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं। गोस्वामी जी ने कहा हमको केवल राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत बोला महाराज हम राम जी का दर्शन कराने की सामर्थ्य हम में होती तो प्रेत ही क्यों होते हम, पर आपने कहा है कि तुम मुझे दर्शन नहीं कराओ तो दर्शन की युक्ति बताओ, तो फिर हम तुम्हें मुक्ति के लिए तुम्हारे लिए कुछ भजन साधन करेंगे। तो उसने कहा महाराज यहां यहां कथा होती है और वहां कुश्ती के रूप में जो आते हैं सबसे पहले आकर बैठते हैं, सबसे पीछे जाते हैं, वो सामान्य नहीं है, वे साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं। उनकी पहचान यही है कि वो सबसे पहले आते हैं और सबसे सब श्रोता चले जाते हैं, उसके बाद जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। बस उनका पीछा कर लेना, फिर चरण पकड़ के छोड़ना मत, बस वे हनुमान जी। और हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो राम जी तो मिलना है ही है। राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे, हनुमान जी के बिना राम जी के दरबार में प्रवेश है ही नहीं। और गोस्वामी जी पहले से जाकर आसन पर बैठ गए और कथा कहने लगे, और ये हनुमान जी पहले से आकर वहां बैठ गए। सब श्रोता चले गए, जब हनुमान जी चले तो गोस्वामी जी पीछे पीछे चले, और जहां आजकल संकट मोचन हनुमान जी हैं इसी स्थल पर गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिए। और हनुमान जी बोले, राम राम मैं कुश्ती हूं, मेरे शरीर से पीब चू रहा है, मवाद चू रहा है। आप महात्मा हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, विरक्त संत हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, वक्ता हैं, आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा। बहुत हनुमान जी ने नाटक किए। गोस्वामी जी की पकड़ बड़ी मजबूत, ने जोर से पकड़ लिया। बोले, महाराज कुछ भी कहो, अब तो छोड़ना नहीं। तब हनुमान जी ने थोड़ी कठोरता भी, डांट डपट भी किया, पर फिर भी गोस्वामी जी का, महाराज जो कुछ करो सब सही स्वीकार है, पर आप अब तो कृपा करो, अब दर्शन दो। वह स्वरूप तिरोहित हो गया, साक्षात श्री अंजनी नंदन श्री रामदूत हनुमान जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी को हृदय से लगाया और कहा, चित्रकूट जाओ, वहां दर्शन होगा। तो इसलिए आप संदेह न करें, तुलसी चरित्र में ही मूल गुसाई श्री बेनीमाधव बाबा श्री बेनीमाधवदास जी ने प्रमाणित किया है। वो उसी गांव का बालक जो गोस्वामी जी के साथ से प्रेत हुआ था, वही उनके लिए उपयोगी बना, और अंत में गोस्वामी जी ने उसको राम कथा सुना करके मुक्ति प्रदान की। तो दूसरी जगह के भूत प्रेत भी आकर के अपने उद्धार के लिए तीर्थों में आकर बस जाते हैं। अयोध्या वृंदावन चित्रकूट और बनारस में भी आकर बस जाते हैं, पर वो बस वही पाते हैं जिनका कोई पूर्व का कोई सुकृत होता है, कोई पुण्य शेष रहता है। हरिशरणम। तो इस शेष सनातन जी की पाठशाला में एक ब्रह्म पिशाच रहता था, उद्धार की कामना से उसने एक बटुक को दबोच लिया। ऐसा हो जाता है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ये भूत प्रेत आदि अधोगति को प्राप्त जो जीवात्माएं हैं, वे अपवित्र जीव पर ही अपना प्रभाव डालती हैं। शरीर में अशुद्धि आई के इनको मौका मिल जाता है, इसलिए सदा पवित्र रहे, पर्याप्त जल और मृत्तिका से शुद्धि करे। लघुशंका जाए तो जल लेकर के जाए, शौच जाकर के पूरा स्नान करे। ये सब जो पवित्रता है, ये रहने जो रखते हैं, वैष्णवाचार का पालन करते हैं, उनको ये दूषित आत्माएं स्पर्श नहीं कर सकती, अशुद्धि पाकर। और बालकों में प्रायः प्रमाद से कहो या अज्ञान बस कहो, उनसे अशुद्धि कई बार रह जाती शरीर में। तो कोई बालक अशुद्ध अवस्था में रह गया और उस ब्रह्म पिशाच ने आक्रमण कर दिया। अब हाहाकार मच गया, बालक के प्राण कैसे बचाए जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी उस समय बालक ही हैं, शेष सनातन जी के गुरुकुल में पढ़ते हैं, पर वे ब्रह्म तेज से संपन्न हैं, भक्ति के तेज से संपन्न हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी नरहरदास जी के द्वारा उपदिष्ट श्री राम रक्षा स्तोत्र के उच्चारण से उस पिशाच के प्रकोप से उस बालक की रक्षा कर ली। शुरू में राघव पात भालम दशरथात्मजः कौशल्यो दृशुपाद विश्वामित्र प्रश्रुति घृणम पात मुखत्राता मुखम सौमित्र वत्सला जिह्वाम विज्ञान भी पात कंठम भरत वंदिता स्कंधो दिव्यायुधा पातु भुजो भुवनेश कारम कह करु सीतापति पातु हृदय जामजगनित मध्यम पात खरध्वंसी नाभिम जाम्बदाश्रय सुग्रीवेशा कटी पातु सिक्थनी हनुमत प्रभु उरुर्घुत महापातु रक्षक कुल विनाश कृत जाननी से कृपात जंगे दस मुखांत कहा पादो विष्णु श्रीदा पातु रामो खिलम बपु। एताम रामगलोपेताम रक्षाम या सुकृति पठेत सचिरायुष की पुत्री विजयी विनयी भवेत। बस इतना ही है रक्षा।